एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत सौ अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1963 की फिल्म देखा प्यार तुम्हारा का गीत चले आना सनम उठाए कदम। आशा भोंसले की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और राज रतन का संगीत। क्या है इस फिल्म का पार्श्व, इसकी विषय वस्तु, इससे जुड़े लोग और कलाकार, फिल्म की कहानी में किस तरह ये गीत फिट होता है, इस गीत के बहाने जाने इस गीत और इस गीत से जुड़ी वो बातें जिन पर शायद अब वक्त की धूल चढ़ चुकी है। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं रचिता देश पांडे। कहानी और उपन्यास के विभिन्न प्रचलित शैलियों या जॉनरों में एक शैली रही है रहस्य की, फिर चाहे वह मर्डर मिस्ट्री हो, किसी अन्य भयानक अपराध की छानबीन हो, पुनर्जन्म की कहानी या संबंधित सस्पेंस थ्रिलर हो। इस तरह की कहानियां और उन कहानियों पर बनने वाली फिल्मों का खास आकर्षण दुनिया भर के दर्शकों में रहा है। भारतीय सिनेमा में भी इस जॉनर की फिल्मों की कोई कमी नहीं है। इन फिल्मों में कुछ फिल्में खूब कामयाब रहीं और कुछ फिल्में पिट गईं। आज एक गीत सौ अफसाने में हम एक ऐसे गीत की बात करने जा रहे हैं जिसकी फिल्म की कहानी में रहस्य भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो जोड़ों का, और साथ में कॉमेडी भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन अफसोस कि कम बजट की फिल्म होने की वजह से फिल्म के सभी पहलू चमक दमक में जरा कमजोर रह गए और फिल्म पिट गई। दोस्तों, ये फिल्म है वर्ष 1963 की देखा प्यार तुम्हारा। ममता मूवीज के बैनर तले देखा प्यार तुम्हारा फिल्म का निर्माण किया था ताहिर भाई अकबर अली खेती ने। हालांकि फिल्म की नामावली में केवल ताहिर लिखा गया है, इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी किसी फिल्म का निर्माण किया था या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, इस फिल्म का निर्देशन किया के परवेज ने, जो आगे चलकर कल्पतरु नाम से भी जाने गए। यूं तो उन्होंने अपना फिल्मी सफर 50 के दशक में शुरू कर दिया था, उनकी कामयाब फिल्में 80 के दौर में ही आई। इस दशक में घर द्वार, खून का बदला खून, घर घर की कहानी और बड़े घर की बेटी जैसी चर्चित फिल्मों ने उन्हें शोहरत दिलाई। उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी 1958 की मिस्टर क्यू। इसके बाद 1961 में सलाम मेम साहब और फिर 1963 की दो फिल्में, एक तो देखा प्यार तुम्हारा और दूसरी कहीं प्यार ना हो जाए। फिल्म देखा प्यार तुम्हारा के संगीतकार थे राज रतन। इस नाम को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन है। जी हाँ, बहुत ही कम चर्चित संगीतकारों में से एक रहे राज रतन, जिन्होंने उपलब्धि जानकारी के अनुसार केवल 3 फिल्मों में संगीत दिया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें केवल 3 फिल्मों में ही संगीत देने का मौका मिला। इस फिल्म के अलावा उनके संगीत से सजी 2 अन्य फिल्में हैं, 1971 की रामू उस्ताद और 1979 की मदीने की गलियां। फिल्म मदीने की गलियां के 2 गीत खूब मशहूर हुए थे, जिनमें एक था रफी साहब का गाया फिल्म का शीर्षक गीत और दूसरी एक कव्वाली कमली वाले हम पे करम कीजिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगीत राज रतन का असली नाम अब्दुल माजिद शेख था। ये कहां से आए, कहां चले गए, फिल्म और फिल्म संगीत के कई इतिहासकारों से संपर्क करने पर भी कहीं से कोई जानकारी प्राप्त ना हो सकी। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि अब्दुल माजिद शेख का नाता या तो निर्माता ताहिर भाई से रहा होगा या निर्देशक के परवेज से। जो भी है, अब्दुल माजिद शेख और फराज रतन ने फिल्म देखा प्यार तुम्हारा में भी काफी उमदा संगीत दिया था। गाने चले नहीं, ये और बात है। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे फिल्म के गीतों में आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर की थी। यह फिल्म उस दौर में आई जब लता जी और रफी साहब रॉयल्टी संबंधित एक मतभेद की वजह से साथ में नहीं गा रहे थे, इसलिए फिल्म के युगल गीत या तो रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाए या आशा भोसले के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म की कहानी में रहस्य छुपा हुआ है, तो जिस फिल्म में रहस्य रोमांच की बात हो, वहां कोई सस्पेंस क्रिएट करता हुआ क्लब सॉन्ग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। और जहां क्लब आइटम डांस नंबर की बात हो, वहां अभिनेत्री हेलन से बेहतर भला और कौन हो सकती है। जी हाँ, इस फिल्म के जिस गीत को इस अंक के केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है, वह हेलन पर फिल्माया एक आइटम नंबर है, जो एक नाइट क्लब के दृश्य में फिल्माया गया है। और हेलन की आवाज पर्दे पर आशा भोसले से बेहतर और किन की हो सकती है। बस गीत बन गया, चले आना सनम उठाए कदम, अंधेरे उजाले मिलेंगे कहीं हम। ये गीत उन गीतों में से एक है जो किसी रेस्टोरेंट या क्लब में किसी क्लब डांसर पर फिल्माया गया होता है, जहां मौजूद लोग गीत और नृत्य का आनंद ले रहे होते हैं और पार्श्व में क्लब के मध्यम रोशनी में कुछ अपराध या अजीबोगरीब हरकतें हो रही होती हैं, जो दृश्य में सस्पेंस पैदा करती हैं। प्रस्तुत गीत के फिल्मांकन में अभिनेता भगवान और सुबीराज को आपस में फुसफुसाते हुए देखा जा सकता है। नाज और मदनपुरी भी दिखाई दे रहे हैं। वहां एक और अभिनेत्री भी मौजूद है, एक महिला जिसने पुरुषों की तरह कपड़े पहने हैं। मदनपुरी और वह महिला अपराध में पार्टनर प्रतीत होते हैं। जब गाना चल रहा होता है तो पुरुष वेश में वह महिला एक अन्य महिला के पास आती है, जो एक अलग टेबल पर बैठी होती है, और गाने के अंत तक उन्हें पता चलता है कि उनके गले का कीमती हार गायब है, संभवतः चोरी हो गया है। दृश्य, परिवेश और कहानी के अंडरकरेंट और सस्पेंस से तालमेल बनाए रखते हुए मजरू साहब ने भी इस गीत के लिए बोल सटीक चुने हैं। चले आना सनम उठाए कदम, अंधेरे उजाले मिलेंगे कहीं हम। दोस्तों, बात सस्पेंस की हो रही है, तो बिना मूल कहानी को जाने भला सस्पेंस का मजा कैसे आ सकता है ना। चलिए, कम से कम शब्दों में आपको इस फिल्म की कहानी बता दी जाए, ताकि इस गीत को सुनने और इस गीत के बारे में जानने का मजा दुगना हो जाए। फिल्म की शुरुआत पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल से होती है, जो एक चोरी की रिपोर्ट करने के लिए थी। एक महिला की शिकायत है कि उसका पर्स चोरी हो गया है और उसके बगल में बैठी लड़की गायब है। वह लड़की का विवरण देती है और पुलिस उसका पता भी लगा लेती है, लेकिन रास्ते में पुलिस को चकमा देकर वह लड़की किसी घर में घुस जाती है। माधुरी नाम की इस लड़की का किरदार अभिनेत्री नाज ने निभाया था और वो ही कहानी के केंद्र बिंदु में है। घर में घुस कर वो छुप छुप कर देखती है कि एक प्रौढ़ा गुड़ियों को लोरी सुना रही है और लोरी गाते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। माधुरी एक कोने में बैठकर उनकी लोरी सुनती हुई भाव विभोर हो जाती है, कि जैसे उसका कोई उनसे पुराना संबंध हो। प्रौढ़ा का चरित्र अचला सचदेव ने निभाया था। अब तक कहानी में नाज और अचला सचदेव के किरदारों के बीच कैसा संबंध है, ये स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। दृश्य बदलता है, रमेश के किरदार में श्याम कुमार और मदन के किरदार में मदनपुरी की आपस में बातचीत चल रही है। अखबार में किसी अमीर घर की लापता लड़की की खोज के लिए उसकी माँ शांति देवी ने विज्ञापन प्रकाशित किया हुआ है। लापता लड़की, जो बहुत छोटी उम्र में अगवा हो गई थी, अब 18 वर्ष की हो चुकी होगी और उसके बाएं गाल पर एक तिल है। रमेश को ख्याल आता है कि माधुरी के बाएं गाल पर भी तिल है। जी हाँ, ये वही माधुरी है जो किसी की पॉकेट मारकर अचला सचदेव वाले घर में घुस गई थी। माधुरी रमेश को अंकल कहकर संबोधित करती है। समझ आता है कि रमेश, मदन और माधुरी चोरी व विभिन्न गैर कानूनी काम करते हैं। माधुरी को बताए बिना रमेश और मदन एक योजना बनाते हैं, ताकि माधुरी को वही लापता लड़की बताकर उस अमीर घराने से इनाम ऐंठ सके। दोस्तों, अब तक शायद आपने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अचला सचदेव ही शांति देवी है और उनकी खोई हुई बेटी है माधुरी। हालांकि कहानी में ये खुलासा काफी बाद होता है। दरअसल शांति देवी के पति के निधन के बाद उनके मित्र रमेश ने शांति देवी और उनकी दौलत दोनों के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन शांति देवी द्वारा बढ़ावा ना दिए जाने की वजह से रमेश के मंसूबे पूरे नहीं हुए और गुस्से में उसने शांति देवी से बदला लेने के तौर पर उनकी बेटी को अगवा करके अपने पास रख लिया। रमेश के घर वह बच्ची माधुरी पलने लगी और रमेश को अपना चाचा मानती रही और रमेश उससे चोरी का काम करवाता रहा। शांति देवी अपनी बेटी की खोज के लिए सुधाकर नामक जासूस को नियुक्त करती है, लेकिन रमेश और मदन उसका कत्ल करवा देते हैं। उसकी लाश को ठिकाने लगाने रमेश और मदन के आदमी जाते हैं। वहां प्रभु नामक एक आदमी, जिसकी भूमिका अभिनेता भगवान ने निभाई, पहुंच जाता है और लाश को ठिकाने लगाने वाले आदमियों से लड़ पड़ता है। प्रभु की मदद के लिए उसका दोस्त राजा पहुंचता है। राज का किरदार अभिनेता सुबीराज ने निभाया था। प्रभु और राज मिलकर उन आदमियों से लड़ते हैं। प्रभु और राज को यह पता चलता है कि शांति देवी की बेटी जो लापता हो गई थी, दरअसल उसे अगवा किया गया था और सुधाकर जासूस उस केस की छानबीन कर रहे थे। प्रभु और राज ये फैसला करते हैं कि वे ही जासूस के भेस में शांति देवी की खोई हुई बेटी को खोज निकालने की जिम्मेदारी लेंगे। जांच के पहले दिन प्रभु और राज एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां उन्हें हेलन चले आना सनम उठाए कदम गीत पर परफॉर्म करते हुए दिखती हैं। जी हाँ, इसी गीत की आज बात हो रही है। यह गीत कहानी के उस मुकाम पर आया है जब रहस्य घनीभूत होना बस शुरू ही हुआ है, रहस्य की जांच बस शुरू ही हुई है। रमेश मदन गैंग की सहायिका माधुरी एक लड़के के भेष में नाइट क्लब में बैठी एक महिला का हार चुरा लेती है। इस महिला के चरित्र में साधना चौधरी ने अभिनय किया है और फिल्म में भी उनके द्वारा निर्वाह किरदार का नाम साधना है। साधना का हार चुराकर माधुरी उसे मदन को सौंप देती है, लेकिन जब चोरी का पता चलता है तो किसी को भी क्लब छोड़ने की अनुमति नहीं होती। पकड़े जाने के डर से मदन वह हार प्रभु की जेब में डाल देता है और प्रभु फंस जाता है, लेकिन राज के साथ वो किसी तरह क्लब से बाहर निकलने में सफल हो ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आकर यह क्लब सीन समाप्त होता है जिसमें आज का गीत फिल्माया गया है। गीत के पहले अंतरे में मजरू साहब ने लिखा है, घूमे जहां सारा चाहत का मारा, दिल है मेरा आवारा, जो है दीवाना पिया तेरा, उसे काहे का गम, चले आना सनम। कामुक अंदाज में गीत के बोलों और अपने नृत्य से अपनी ओर आकर्षित करती हुई डांसर द्वारा वहां उपस्थित लोगों का ध्यान बटाना और उस वजह से हार का चोरी हो जाना दृश्य में इस गीत के औचित्य को बढ़ाता है। दूसरे अंतरे में भी नृत्यांगना का सेडक्टिव अंदाज बरकरार रहता है जब वो गाती है, हो के दीवाने छेड़ेंगे बेगाने, जादू भरे ये अफसाने, किसी के कहे में ना आना, तुम्हें मेरी कसम, चले आना सनम। इन पंक्तियों में जैसे वह एक तरह से सतर्क रहने की सलाह दे रही हूँ। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के रोमांच को बढ़ाते ये सांकेतिक बोल मजरूह जैसे किसी स्थापित शायर का ही काम हो सकता है। इस प्रकार हेलन पर फिल्माए हुए इस आइटम नंबर के फिल्मांकन में फिल्म के चारों प्रमुख पात्र यानी प्रभु, राज, माधुरी और साधना मौजूद हैं। हेलन फिल्म के केवल इसी गीत में नजर आती हैं, यानी उनका किरदार पूर्ण रूप से इस आइटम नंबर के लिए ही रखा गया था। दोस्तों, फिल्म की कहानी में कैसे राज खुलते जाते हैं, कैसे प्रभु और साधना के बीच तथा राज और माधुरी के बीच प्रेम पुष्प खिलते हैं, कैसे वे रमेश और मदन का भांडा फोड़कर माधुरी को उसकी माँ से मिलवा देते हैं, ये सब आप फिल्म में देख सकते हैं जो YouTube पर उपलब्ध है। फिलहाल हम यही बताना चाहेंगे कि यह जो गीत है चले आना सनम उठाए कदम, इसे सुनते हुए आपको कभी ओपी नैयर तो कभी SD बर्मन के गीत की याद आ जाएगी। हाँ, वैसे ऑर्केस्ट्रेशन में इन दोनों के स्टाइल का असर नजर नहीं आता। संगीतकार राज रतन के पहले फिल्म के लिहाज से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मजरू साहब के बोलों के साथ पूरा न्याय करता उनका गीत और यथार्थ ऑर्केस्ट्रेशन सुनकर लगता ही नहीं कि यह किसी नवोदित संगीतकार की रचना है। और हैरानी इस बात की होती है कि इस फिल्म के बाद उन्हें अगले 7 साल तक किसी ने मौका ही नहीं दिया। खैर, सब अपनी किस्मत लेकर आए हैं, जिसके नसीब में जो है उसे उतना ही मिलना है।
इसी बात पर आज के इस अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी बातों को लेकर हम उपस्थित होंगे। नमस्कार, संज्ञा का
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।